Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sonu Sood.
Dhanyavaad, yes. Lalima. Namaskar, Shrotao. Market Mantra mein aapka swagat hai, jahan hum aarthik, vyaparik aur share bazaar ke taza samachar aap tak laate hain aur un par charcha bhi karte hain. Charcha ke liye hamare saath studio mein aamantrit hain varisht aarthik vishleshak Sushma Ramachandran. Sushma ji, namaskar. Market Mantra mein aapka swagat hai.
Dhanyavaad, Sonu.
Aur ab shuruaat mein headlines ke saath hai Lalima Aneja Dang.
Thanks, Sonu. Yes, let's begin with the headlines right away. Well, benchmark domestic indices rise for second consecutive day. Sensex gains over 550 points. Nifty settles above 23,500. Major Asian indices end mixed. And global crude oil prices surge over 3%.
प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे दिन तेजी रही. सेंसेक्स 550 अंकों से अधिक बढ़ा. निफ्टी 23,500 के ऊपर पहुंचा. प्रमुख एशियाई बाजारों में रुख मिला जुला रहा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में 3% से अधिक का उछाल.
And friends, before we move on any further, here's a disclaimer for all of you, and that is that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और अब चलते हैं शेयर बाजारों की ओर. प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज 0.75% की तेजी पर बंद हुए. ये लगातार दूसरा दिन है जब बाजारों में बढ़त दर्ज हुई. सेंसेक्स 568 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 76,071 पर बंद हुआ और निफ्टी 172 अंकों की बढ़त से 23,581 पर दर्ज हुआ. एशियाई और अमरीकी बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के अनुरूप भारतीय बाजार सुबह हल्की तेजी के साथ खुले, लेकिन जल्द ही पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि पर उभरी चिंताओं के बीच बाजारों में उथल पुथल दिखाई दी. निफ्टी अनुबंधों की साप्ताहिक एक्सपायरी के चलते पूरे सत्र के दौरान सूचकांकों में उतार चढ़ाव बना रहा, हालांकि कारोबार की समाप्ति मजबूत वृद्धि के साथ हुई.
Benchmark domestic equity indices closed 0.75% higher today, marking their second consecutive day of gains. The Sensex climbed 568 points to close at 76,071, while Nifty rose 172 points to settle at 23,581. Earlier, the markets opened on a slightly positive note, tracking strong cues from Asian and US markets, but soon turned volatile amid concerns over ongoing West Asia tensions and rising crude oil prices. The indices remained choppy throughout the session due to weekly expiry of Nifty contracts, but eventually closed with strong gains.
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 21 के शेयर बढ़त पर बंद हुए. अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों में सबसे ऊपर रहा 5.7% उछाल के साथ एटर्नल. टाटा स्टील को 4.4% का फायदा हुआ और महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 3.1% की बढ़त में रहा. इसके विपरीत इंफोसिस के शेयर में लगभग 1.4% की गिरावट आई. बजाज फाइनेंस के शेयर में लगभग 1.2% की मंदी आई और आईटीसी का शेयर 1% से अधिक गिरकर बंद हुआ.
Among the sectoral indices at the BSE, 22 out of 25 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, metal jumped 2.8%, auto added more than 2%, and realty advanced 1.8%. Conversely, focused IT as well as IT dropped almost 0.9%, and FMCG fell by 0.6%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,332 companies advanced, 1,930 declined, and 149 remained unchanged.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत हुआ और 1 डॉलर की कीमत 92.37 रुपए दर्ज हुई. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.72 पर था. सुषमा जी, हमने देखा है कि आज भी बढ़त हुई है, कल के बाद ये सप्ताह अच्छा रहा है बाजारों के लिए. दो दिन में 2% की बढ़त, खासकर अगर हम पिछले सप्ताह को देखें जहां खासी गिरावट थी, तो कैसे देखते हैं आप ये बाजार का जो सेंटिमेंट है, ये किस कैसे टर्न अराउंड हुआ है और आगे आपको क्या आशा है?
देखिए, सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ी चीज जिसका मतलब वेट जो कह सकते हैं इस वक्त मार्केट के ऊपर है, वो है ये युद्ध जो हो रहा है गल्फ में, वेस्ट एशिया में. यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर जो युद्ध छेड़ा है, अटैक्स किए हैं, तो इसका जो इसकी जो फॉलोआउट है हम देख रहे हैं, हम सब अखबारों में देख रहे हैं और अपनी निजी जिंदगी में भी हम सब देख रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी चीज इस वक्त ये है कि एलपीजी की क्राइसिस है. पर ये जो क्राइसिस है ये थोड़ी एक दो दिन से ये काफी कम हुई है, इन द सेंस कि जो पैनिक बुकिंग हो रही थी वो कम हो गई है. जिनके एलपीजी कनेक्शंस हैं उन्होंने वैसे ही 2-3 बार अपना बुकिंग की कोशिश की जल्दी जल्दबाजी में, कि भाई डर के मारे कि वो सिलेंडर ना आए, तो वो पैनिक बुकिंग बंद हुई है. दूसरी खबर ये आई है कि 2-3 हमारे जो जहाज हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जिसके बारे में बहुत चर्चा खैर हुई होगी हमारे प्रोग्राम में भी और पेपर्स में भी, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से काफी सारे हमारे जो जहाज हैं जिसमें ऑयल और गैस भरा हुआ है वो इस स्ट्रेट से आते हैं, और ईरान ने इस स्ट्रेट को ब्लॉकेड किया हुआ है. पर इस वक्त पिछले 2-3 दिन से हमारे 1-2 जहाज कम से कम पहुंच गए हैं, एक और जहाज आने वाला है, और इन जहाजों में एलपीजी है. तो इससे लगता है कि जो एलपीजी की जो शॉर्टेज थी, टेम्पररी चाहे भी हो, लेकिन टेम्पररी शॉर्टेज जो है वो इसको रिकवर कर लेंगे. तो इसका जो असर है मार्केट के ऊपर बहुत बड़ी चीज है कि ये जो क्राइसिस है धीरे धीरे ये कम हो जाएगा.
Sushma, yesterday the Sensex climbed, and today again it's a good day. It's climbed 568 points. Considering this, that where do you see the markets going? Is this the right time to invest? Because or should one wait for the Sensex to go further down? Which way do you think is this the right time to invest? It's a difficult question.
It's a difficult question to ask answer in the long term. I mean, I would always advise investors to look at the long term before investing, and at a time of volatility, which is right now, one has to be careful. However, if you do want to take advantage of the fact that, you know, shares are at a low ebb, you can certainly pick and choose shares, but it's very important for investors to select the right stocks and to select companies that have healthy balance sheets, which also have a long term potential. You could have a company that seems to have, you know, the shares seem to have come down, but it may not be a good prospect for the long run. And therefore, this selection needs to be very specific and very careful and very well thought out.
Blue chips are always a safe bet?
Blue chips are not always a safe bet.
No, not always.
Yeah. But most of the time, I would say 90% of the time, they are a safe bet. But sometimes they are not. There are some companies, I would like to mention them, who are doing very well, but somehow their stocks don't seem to rise very high. So I don't want to mention these companies, but there are a few.
Sushma ji, is saptaha jo humne tezi dekhi hai bazaar mein, آپ کو لگتا ہے جو ڈومیسٹک اورینٹڈ سیکٹرز ہیں
جی
جیسے بینکنگ ہے
بالکل
یا آٹو ہے یا میٹلز ہیں اس میں ویلیو بائنگ ہو رہی ہے جیسا ابھی لالیما کہہ رہی تھی کہ شاید کوئی اپرچونیٹی ہے تو ویلیو بائنگ کا ایک جو یو نو فینومینا ہے وہ ایسے سمے پر ہی ہوتا ہے
جی ہاں ویلیو بائنگ کا سمے یہ ہے ڈومیسٹک اورینٹڈ پر اس میں یہ میں نہیں مانتی کہ آٹو سیکٹر ہمارا ڈومیسٹک اورینٹڈ ہے آج کل کیونکہ ایکسپورٹ ایک تو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور دوسرا ہم کو کمپوننٹس کا امپورٹ کافی کرنا ہے تو یہ کافی سیکٹرز جو ہیں جن کو ہم ڈومیسٹک اورینٹڈ مانتے ہیں لیکن ان کا جو انوالومنٹ گلوبل ٹریڈ کے ساتھ ہے بہت زیادہ ہے تو جیسے کہ فارما کی ایکسپورٹس اس وقت ہم کو ایکسپورٹ بھی کرنا ہے اور ہم کو جو انگریڈینٹس ہیں فارما کے وہ بھی ہمیں ضروری باہر سے لانے ہیں تو وہ بھی بائی سی آ رہے ہیں تو یہ کافی ساری جو سیکٹرز ہیں ڈومیسٹک اورینٹڈ تو ہم سمجھتے ہیں لیکن ان کا انوالومنٹ گلوبل ٹریڈ کے ساتھ کافی ہے
سو بہت ہی کوشش رہنے کا ایک سمے ہے ایف آئی آئی کا اگر ہم دیکھیں تو فیبروری میں ان کا پوزیٹو ایک انکلینیشن ہوا تھا بائنگ کی طرف بھارتی بازاروں میں لیکن مارچ میں اب لگاتار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بکوال ہیں اور جو ڈی آئی آئیز ہیں یا ریٹیل انویسٹرز ہیں ان کی طرف سے ایک سنبل مل رہا ہے بازار کو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈ آگے بھی ابھی جاری رہے گا
میرے خیال یہ تو ہمارا کافی دو تین سالوں سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ڈومیسٹک انویسٹرز ہماری مارکیٹ کو کافی سپورٹ دے رہے ہیں اور کافی کشن دے رہے ہیں حالانکہ فورن انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کی بگوالی کافی مطلب کافی مہینوں سے چل رہی ہے بیچ بیچ میں جیسے آپ نے کہا فیبری میں تھوڑا سا بڑھ گیا ان کا خریدنا یہاں پر سب سے بڑی بات ہے اور یہ صرف انڈیا کی خاص بات ہے کہ ہمارے دیش میں یہ ڈومیسٹک انویسٹرز نے بہت اپنا جو فیتھ ہے اپنے یہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں ڈالا ہے
Sushma, one aspect of this West Asia conflict is that it has sprung up talk about or discussion on energy security. And when we talk of energy, oil can't be behind. Talking about oil, the prices have gone up. IEA says that it has released oil. Japan is also releasing its oil reserves. Still, oil prices are likely to go up, have gone up. Assuming it goes on for some time, will it pressurize our rupee and will it affect our current account deficit? Or can we bank on our wonderful foreign reserves and say, well, all is well?
Well, you know, we need to keep our first, coming to your last point first, we need to keep our foreign exchange reserves intact and not really utilize them in the short run for a situation like this. Of course, we are, as you rightly said, we have a good cushion of foreign exchange reserves. Also, we have to see the time span in which this prices go up. If the prices are going up to, say, you know, right now it's over $100, about $103 for the benchmark Brent crude. If it continues for, say, a month, that would bring the average for the year slightly higher, but it would be comfortable. Maybe keep, if the average is, say, at about $80 or $85 for the year, India would be able to manage it. But if the prices go up to, for an average of an entire year, I'm talking about, of $120, $130, that is when we have to be concerned about it. And that is when we might have to draw upon our reserves, foreign exchange reserves, to a larger extent. But at the current situation, we can only hope that this conflict gets over within the next few weeks, at least within a month, and then India should be able to manage fairly comfortably, despite the fact that we have a very very heavy reliance on imported products.
اگر ہم انویسٹر سینٹیمنٹ کی بات کریں تو کل یو ایس فیڈ کی جو میٹنگ ہے اس کے یو نو سامنے آئے گا آؤٹ کم اینڈ موسٹلی پیپل آر تھنکنگ کہ شاید انٹرسٹ ریٹ میں کوئی چینج نہیں ہوگا لیکن جو کامنٹری ان کی آئے گی اباؤٹ دی امپیکٹ آف دی وار یو ایس اکانومی پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر رہے گا سینٹیمنٹ کے لیے ہمارے بازار کے لیے بھی
ڈیفینیٹلی ہمارا جو ہماری مارکیٹس ہیں کافی گلوبلائزڈ ہیں اور ہم ڈیفینیٹلی ہماری مارکیٹ ریئیکٹ کرتی ہے جب گلوبل ڈیولپمنٹ اور خاص کر جو یو ایس کا جو فیڈرل ریزرو ہے وہاں پر جو ہوتا ہے اس کا امپیکٹ اس کا ریپل افیکٹس جو ہیں ہماری مارکیٹس پہ ضرور آئیں گی
जी, सो हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की, तो उन पर एक नजर भी डाल लेते हैं। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से जुड़े ताजा घटनाक्रम और तेल की कीमतों में वृद्धि पर निवेशकों की नजर टिकी थी। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 1.6% से अधिक के उछाल में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में लगभग 1.4% की वृद्धि आई और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.1% से अधिक बढ़कर बंद हुआ। इसके विपरीत चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% से अधिक के नुकसान में रहा और जापान के निकेई सूचकांक में 0.1% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां के प्रमुख बाजारों में बढ़त का रुख था। लंदन का फुटसी 0.7%, जर्मनी का डैक्स लगभग 0.6% और फ्रांस का कैक 0.3% से अधिक वृद्धि पर थे।
Yes, a look at the U.S. markets. Well, the Wall Street closed sharply higher yesterday, led by strong gains in artificial intelligence-related stocks. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index surged over 1.2%, the S&P 500 rose 1%, and the Dow Jones Industrial Average advanced more than 0.8%. Sushma, when we talk of artificial intelligence, we know that's the future. We also had a summit here, a big summit. I want to have a contrast. Here in India, our IT dropped almost 0.9%, and IT has also seen a bit of choppy waters, going up and down frequently.
Yes.
Can we say IT and artificial intelligence are in contradiction, or can IT be upgraded to get closer to artificial intelligence and so stabilize the shares of these sectors?
I think you have to separate the two, because for the simple reason, though of course our IT companies are also dealing with artificial intelligence, it's very important for them. But the reasons that the stock market is has been giving a kind of a thumbs down to IT companies in recent times is because two reasons. One, of course, is the controversy over H-1B visas and the problems over, you know, sending our Indian personnel from these IT companies abroad to take up projects. That's number one. The other one is that artificial intelligence itself is becoming such an important issue that a question mark has arisen over our IT companies, whether they would be able to overcome the challenge of their customers requiring AI, and would they be able to meet the demands of AI customized products, and would they be able to change the kind of products that they are offering to their clients. So these are the fears for IT companies. As far as the AI is concerned, the AI companies where stocks are going up, as you rightly said, they are, of course, these are the companies which are investing, the big tech, which is investing in AI, and huge amounts are being invested there, and there's so much hope there. So there's a different kind of outlook for both.
Sushma ji, Asiai bazaaron ki agar baat kare to jaisa aapne kaha ki Strait of Hormuz se abhi exports jo hai wo badhit hai kafi had tak, to iska major impact in areas mein aata hai and US par utna nahi aata, lekin ye zyada iska impact kya hum Asiai deshon mein dekhte hain?
Asiai, ha bilkul, kyunki Strait of Hormuz jo hai wo kafi sara tel wahan se jab aata hai aur गैस की भी अगर हम बात करें तो इसका काफी, जैसे 50% कम से कम एशियाई देशों को जाता है पर्शियन गल्फ से, तो हाँ इसका असर इन देशों के ऊपर जरूर है, ज्यादा।
सो आपको लगता है कि एशियाई देशों में जो भी ट्रेंड रहेगा भारत में, वो टैंडम में चलेगा?
हाँ, वो टैंडम में ही चलेगा, क्योंकि हमारे लिए भी हमेशा से, मतलब काफी सारे लॉन्ग टर्म से, हमारी सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल और गैस इसी जगह से आता रहा है, वेस्ट एशिया से। इस सिर्फ 2 साल से ही रशिया का से हमने ज्यादा लेना शुरू किया, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हीं वेस्ट एशियन देशों से ही है।
Is US insulated from what it all started? They started it all, the war. Are they insulated against all the inflation or the after effects of the war?
They are insulated from the problem of shortages because they're a big oil producer, mm-hmm. They started producing shale oil, they have become one of the biggest oil producers in the world. So they're insulated from availability, but they're not insulated from price. So the price has shot up, and in America there is a pass through of the price immediately to the retail level, unlike in India. So consumers in America are feeling the pinch of high gasoline prices immediately, and that of course is also going to be linked to what the US government does.
So Bharat ka jo prabandhan hai uski tareef karni hogi, Bharat ke jo sarkar ka jis tarah se hamara jo prices abhi steady hai, stable hai.
हम तारीफ तो कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये दाम कम हुए थे तो हमने कम नहीं किए अपनी रिटेल प्राइसेस. हाँ, पर इसका फायदा ये है, इसका फायदा ये हुआ कि ऑयल कंपनीज के पास इस वक्त कुशन है. जब प्राइसेस एकदम से बढ़ गई हैं तो वो उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ाए नहीं है क्योंकि उनके पास वो कुशन है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं कम से कम 6-8 पीने के लिए.
बिल्कुल. और अब चलते हैं अगली खबर की ओर.
लेट्स.
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्रसल्स की यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों के साथ वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की. इसमें पश्चिम एशिया की स्थिति और ऊर्जा सुरक्षा पर इसके प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया गया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ के मंत्रियों ने इस संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर भी बल दिया.
भारत का पक्ष रहा है कि संवाद का रास्ता तय किया जाए, राजनयिक माध्यम का रास्ता तय किया जाए ताकि जल्द से जल्द इस संघर्ष को विराम पे लाया जाए. सभी देशों से ये हमारी आह्वान है कि संयम बरतें और संघर्ष को आगे बढ़ने से रोका जाए.
प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. सुश्री सुजाता ने कहा कि सरकार वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए लंबित अनुमतियों को स्वतः स्वीकृति दे दी जाए और नए आवेदनों को 24 घंटे के भीतर मंजूरी दी जाए.
क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है, हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर काम कर रही हैं, रिटेल आउटलेट्स पर कोई शॉर्टेज नहीं है, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. नेचुरल गैस के संबंध में भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि जो भी कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स हैं अगर वो पीएनजी पर शिफ्ट हो तो अच्छा होगा. इसी दिशा में भारत सरकार भी प्रयासरत है.
सो बहुत ही ये एक कहें कि प्रैक्टिकल अप्रोच है और जिस तरह के सुझाव भी दिए जा रहे हैं और जो बात कही है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से सारे जो भी सिचुएशन है उसको संभाला जाना चाहिए, ये एक्चुअल में हम उसको कर भी रहे हैं.
बिल्कुल. ये और ये बहुत इससे साफ दिखाई देता है कि हमारे देश के ये तीन जहाज जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में से आ गए हैं. हालांकि सब देशों की जहाजों को अनुमति नहीं दी जा रही है, ईरान सबको अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन हमारे जहाज चले गए हैं. हालांकि ये एक हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि ये ब्लैंकेट क्लियरेंस नहीं है, हर एक शिप के लिए हमें बात करनी पड़ेगी. लेकिन फिर भी अगर तीन आ गए तो धीरे धीरे करके बाकी भी आ जाएंगे.
All right, let's move on. Global crude oil prices surge over 3% today, recovering some of the losses from the previous session. The ongoing conflict in West Asia now in its third week with no clear end in sight continues to disrupt oil production and shipping, while the Strait of Hormuz remains largely shut. Brent crude was trading over 3.2% up at $103 and 44 cents per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading more than 3.5% up at $96.83 per barrel when reports last came in. So, Shma, I want to say the buck stops at crude oil.
Absolutely, absolutely.
What would you say to that? How is the government going to manage this?
Well, the government walk for them. Yes, no, the government simply cannot do anything about prices. This is a global situation. Mm-hmm. West Asian, the crisis, I mean, the war is going on. These are developments that are beyond any government's control, except those who are actually taking part in this war. But I think what they have done, and as Sonu rightly talked about, the fact that they are doing, carrying out dialogue and diplomacy to make sure that we don't have any disruption in our supplies, especially of natural gas. Crude oil, we are fortunate. We have our own petroleum reserves. We have we have stocks at the refineries, and therefore we are sufficient for the next at least 75 days. Also, we are not dependent as far as crude is concerned just for supplies from West Asia. We are getting crude from as many as 40 countries. We're getting crude from the US, we're getting crude from Russia, and therefore we are quite comfortable there. The problem has been of natural gas, and that also looks like it is easing now.
चलिए अब चलते हैं आगे खबर की ओर. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है. आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए विश्व भर में उत्साह बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात पिछले महीने फरवरी तक स्थिर रहा, लेकिन इसमें गिरावट नहीं आई. श्री गोयल ने कहा कि मार्च के पहले सप्ताह में निर्यात में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन दूसरे सप्ताह में इसमें सुधार हुआ. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस माह के अंत तक भारत अपने निर्यात स्तर को बनाए रखने में सक्षम होगा.
पूरे विश्व में एक प्रकार से भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का आज उत्साह है. 3-3.5 वर्षों में हमने 38 विकसित देशों में द्वार खुले हैं अब भारत के निर्यातकों के लिए. भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं, भारत के मछुआरों के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए, नए निर्यातकों के लिए, नए प्रोडक्ट्स और नए सर्विसेज के लिए, नई मार्केट्स खुलेंगी बड़े रूप में. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का शुरू नया अध्याय लिखा जा रहा है.
आप अभी बात कर रही थी डाइवर्सिफिकेशन की, तो ना सिर्फ ये हमारे निर्यात के लिए, जैसा इस स्टोरी में बहुत विस्तार में बताया गया, हमारे आयात के लिए भी, जो जरूरी आयात है दोनों के लिए, ये जो ट्रेड डील्स हो रही हैं,
जी जी बिल्कुल,
ये बहुत जरूरी है.
हाँ बिल्कुल, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, पर ये भी देखना है कि हमारी जो ये वाणिज्य मंत्री ने बोला कि जो एंथुजियाज्म है हमारी भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए वो बढ़ रही है. अगर आप देखें पिछले साल हमारी इतनी चिंता हो रही थी कि भाई ट्रेड डील यूएस के साथ नहीं हो रही, जबकि जब उसके बाद डेटा हमने देखा, ये अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर का देखें, तो हमारी जो जो ट्रेड बायलैटरल ट्रेड यूएस के साथ ही बढ़ गई. हमने सोचा कि वो कम हो जाएगी, कि हमें और रास्ते देखने पड़ेंगे और मार्केट्स देखने पड़ेंगे, लेकिन यूएस के साथ, हालांकि 50% की जो टैरिफ थी उसके बावजूद वहां हमारी बायलैटरल ट्रेड, हमारी एक्सपोर्ट्स वहां की बढ़ गई है. और उसके साथ साथ जबकि ये क्राइसिस हुआ, तो फिर ये काफी सारी इंडस्ट्रीज, अगर आप जेम्सन ज्वेलरी देखें, फुटवेयर देखें, कई जो उद्योग है उन्होंने दूसरी मार्केट्स को देखा, जैसे वेस्ट एशिया को देख रहे थे, तो उन्होंने ये डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर लिया, तो वो काफी काफी पॉजिटिव आप हम समझ सकते हैं सिनेरियो है.
जी बिल्कुल. और अब रुक करते हैं प्रेशियस मेटल्स का.
इन द इंडियन बुलियन मार्केट 24 कैरेट गोल्ड वाज ट्रेडिंग 0.2% अप एट 1,56,870 रुपीस पर 10 ग्राम्स, व्हाइल सिल्वर वाज ट्रेडिंग ओवर 0.1% डाउन एट 2,56,540 रुपीस पर किलोग्राम अ शॉर्ट व्हाइल अगो.
उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना 0.3% की वृद्धि से 1,56,193 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, और मई अनुबंध वाली चांदी में कोई खास बदलाव नहीं था और वे 2,56,450 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम इस पर चर्चा करें। शॉर्ट सा कमेंट आपका, आपको लगता है कि तेजी रहेगी आने वाले दिनों में?
जरूर रहेगी, ये सेफ हेवन एसेट्स हैं तो ये तो तेजी रहेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुषमा जी, आप आई और आपने विभिन्न विषयों पर हमें विस्तार से जानकारी दी।
And friends, before we wind up, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise for second consecutive day. Sensex gains over 550 points. Nifty settles above 23,500. Major Asian indices end mixed and global crude oil prices surge over 3%. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Sonu Sood, and our expert, Sushma Ramachandran, signing off. So it's Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।